के भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।
ओम शांति। आज कौन सा दिन है? आज हम सबसे कालों का काल महाकाल मिलन मनाने के लिए आ रहा है। हर साल हम बाबा से मिलन मनाते हैं, स्वयं को चार्ज करते हैं, भरपूर करते हैं, परिवर्तन की गति को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं, जो भी कमी कमजोरियां होती हैं उनका भी निरीक्षण करते हैं, उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। सोमान की श्रृंखला में आज कल शतक पूरा हो गया, सोमान शतकम। आज है एक स्वाक, एक दिन, पहला दिन है आज। तो आज का जो सोमान है, कौन से मुरली से आप ढूंढ लेना कौन से मुरली से होगा। मैं रुद्र महाकाल की तीसरी आंख हूँ। सभी मुरलियों से, सभी मुरली में कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। तो महाकाल का नाम सुनते ही क्या होता है, कौन सी छवि हमारे मांसपटल पर उभरती है? महाकाल किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? मौत। महाकाल को पुकारना अर्थात मौत को पुकारना। बाबा कहते हैं ना, तुमने महाकाल को पुकारा है, क्योंकि प्यार के सागर से तो बहुत प्यार अनुभव कर लिया, लाड कोड अनुभव कर लिया, स्नेह के सागर में डूबते रहे। अनेक प्रकार की जो मुरलियां हैं हमने सुनी, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा रौद्र रूप भी चाहिए। तो आज कौन किससे मिलने आया है? कालों का काल महाकाल, मास्टर महाकाल बच्चों से मिलने आया है। वास्तव में शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्दों में आग होती है, बहुत शक्ति होती है उनमें। जो भी पुरुषार्थ की तड़फ अगर हमारे अंदर बढ़ती है, अगर साधारण शब्दों को नए तरीके से अगर परोसा जाए सामने वाले के सामने, तो उसमें एक नवीनता भासती है, उसमें एक शक्ति होती है, एनर्जी होती है, ताकत होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का चिंतन करते रहो। बाबा जो सुना गया है केवल उसको हूबहू याद रखना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में अपना चिंतन चलाना, जिस चिंतन की धारा से हमें स्वयं का परिवर्तन महसूस हो, जिस चिंतन की धारा से आत्मा हल्की होने लगे, जिस चिंतन की धारा से स्वयं में एक एनर्जी अनुभव हो, एक आगे बढ़ने के लिए नए नए संकल्पों का अवतरण हो। तो ऐसे हमें नए संकल्प क्रिएट करने हैं, नहीं तो हम रटे रटाए संकल्पों पर चलते रहते हैं। इस सुमान की सीरीज में 100 क्लासेज जो चली, वो सारी मूल्यों से आधारित थे, लेकिन हमें कहा गया अभी आपको सारा अलग से करना है, सारे संकल्प अलग से हों। तो रुद्र महाकाल की तीसरी आंख, तो इसमें देखेंगे जो आंख है ये बहुत छोटी होती है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े जाल बुनती है, और उन जालों में हम ही स्वयं ही फंसते रहते हैं। जो भी हम दृश्य देखते हैं, वो दृश्य मन बहुत जल्दी समझता है। जैसे अभी क्लास हुई इंग्लिश की, हो सकता है वो पूरी याद एज इट्स नहीं रहेगी, लेकिन जो समझाया चित्रों के माध्यम से, जैसे बताया 200 आंखें देख रही हैं, तो मन में वो चित्र छप गया एक, तो इसलिए ये आंखें भी जल्दी जल्दी शब्दों को उतना याद नहीं रख पाती हैं, लेकिन उस चित्र को याद रखती है। और वो चित्र हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव असर छोड़ते हैं, हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं, हमारी दिनचर्या को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए नवीनता चाहिए इस ब्राह्मण जीवन में, योग में नवीनता, ज्ञान में नवीनता। तो इस छोटी सी आंख ने कौन कौन से ऐसे जाल बुने हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। जैसे शंकर महाकाल है, उसको कहा जाता जब उसकी तीसरी आंख खुलती तो क्या होता है, विनाश। तो बाबा ने भी हम सबको जन्म लेते क्या दिया, तीसरी आंख दी है, स्थापना के साथ साथ विनाश की भी सामग्री साथ में दे दी। अगर हमारी तीसरी आंख खुली नहीं है तो हम इन दोनों आंखों के आधार पर ही जीवन जीते रहते हैं, और इन दोनों आंखों का जो चिंतन है इसी संसार का ही चलता रहता है। जो भी हम सारे दिन में दृश्य देखते हैं, चाहे हम अलौकिक दृश्य देखते हैं, लेकिन फिर भी वो भी अलौकिक दृश्य भी कहाँ लौकिक में परिवर्तन हो जाते हैं पता नहीं चलता, वो अलौकिकता से फिर लौकिकता की ओर यात्रा शुरू हो जाती है, उल्टी यात्रा। अगर हमारी तीसरी आंख खुली है तो फिर हम लौकिकता में नहीं जाएंगे, लौकिकता से अलौकिकता की ओर हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। इसलिए हमेशा हमें स्मृति रूपी आंख हमेशा खुली रखनी है, ये आंखें बंद रखनी है, दो आंखें जो हैं चर्म चक्षु जो हैं, संसार की जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, नकारात्मक दृश्य हैं, ऐसे वैसे समाचार होते हैं जो हमको प्रभावित करते हैं, हमारे पुराने संस्कारों को फिर से बाहर ले आते हैं, इन आंखों को बंद रखना है। नहीं तो हमारे अपने ही संस्कार हमारे पर तांडव नृत्य करते रहते हैं, हमारे अपने ही संस्कार जो हैं तूफान लाते हैं अंदर। हाँ, वो तांडव फिर भंगड़े के रूप में अनुभव होता है, गरबा रास के रूप में, लेकिन हमारी सारी शक्तियाँ उसमें क्षीण हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा दुखी हम अपने ही संस्कारों से होते हैं, बैठे होते हैं मेडिटेशन में या कोई भी कर्म करते, कर्म भी एक मेडिटेशन ही है, लेकिन बैठे बैठे कहाँ हमारी आंखें चली जाती हैं, मन की आंखें चली जाती हैं, क्योंकि संस्कार लंबे समय से पक्के हो गए हैं, आदत पक्की हो गई है। इसलिए हमेशा हमको स्मृति रूपी आंख खोल के रखनी है, होश की आंख, नहीं तो बेहोशी की अवस्था में हम जीते रहते हैं, फिर परिवर्तन की गति फास्ट नहीं होती है। तो हमें स्वयं के अंदर देखना है कि कौन कौन से ऐसे जाल हैं जिनके अंदर मैं फंसा हुआ हूँ अभी तक भी, और वो सभी का अलग अलग हो सकता है। यहाँ जितनी भी हम क्लासेस सुनते हैं, जरूरी नहीं है उसी क्लास को सुनकर हम उस जाल से मुक्त हो जाएं। हाँ, कहीं ना कहीं वो क्लू मिल सकता है, लेकिन जिस जाल में हम फंसे हुए हैं, ग्रसित हैं, उससे छूटने की विधि भी हमें ही मालूम होती है, सामने वाला नहीं बता सकता वो, क्योंकि कैसे हम फंसे हैं वो भी हमको ही पता होता है। सामने वाला अगर बता भी देगा, लेकिन छूटने की प्रक्रिया तो स्वयं को ही आरम्भ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हम फंसे हैं उसी तरीके से हमको छूटने का पुरुषार्थ स्वयं ही तलाशना पड़ेगा, उसका मार्ग। तो देखना है स्वयं के अंदर ऐसे कौन कौन से अंदर में जहरीले सांप बैठे हुए हैं, और किस रूप में, विचारों के रूप में, नेगेटिव संकल्पों के रूप में। दूसरा सांप अगर काटे तो मनुष्य बच सकता है, लेकिन एक भी अगर जहरीला हमारे अंदर विचार आ गया तो सारी की कमाई चट हो जाती है। इसलिए बाबा ने इस शरीर की तुलना किससे की है? सांप से की है। अब ऐसा नहीं है कि शरीर दिखाई नहीं देगा, शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी वास्तविकता को समझना है, उसकी यथार्थता को समझना है, तो देखना है कि हमारे अंदर में कौन कौन से इस आँख ने ऐसे जाल बुन के रखे हैं या इस इतने सांप अंदर इकट्ठे करके रखे हुए हैं कि जो हमें ही डसते रहते हैं, जिनसे हम छूटना भी नहीं चाहते हैं। असंख्य व्यर्थ विचार हमने अपने बुद्धि रूपी तिजोरी में जमा करके रखे हुए हैं और उन्हीं से लगाव हो गया है, उन्हीं से आकर्षण हो गया है और उन्हीं के हम पालन उन्हीं का पालन पोषण करते रहते हैं। इसलिए नए नए संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, शुद्ध संकल्प, पावरफुल थॉट अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में जमा करने का पुरुषार्थ करना है और वो रोजाना हमें मुरली से मिलते ही हैं, लेकिन उसको नए तरीके से करना है। अगर पुराने तरीके से करेंगे तो थोड़ा समय तो ठीक चलेगा, लेकिन फिर वो साधारणता ही जीवन में अनुभव होती है, जो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इसलिए स्वयं को हमको जागृत रखने के लिए कुछ उपाय रचने पड़ेंगे, कुछ तो अपना खुद ही प्लानिंग बनानी पड़ेगी, खुद ही नया रास्ता तलाशना पड़ेगा। तो शंकर का चित्र सभी इमेजिनेशन करेंगे और शंकर की तस्वीर में देखेंगे उसके उसका श्रृंगार कौन कौन सा है, उसके जटाओं में क्या है, चंद्रमा, और चंद्रमा से ऊपर क्या बहता है। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान की गंगा अविरल रूप से बहती रहनी चाहिए। और शंकर के गले में क्या है, सांप है, तो हमें क्या करना है, उससे घबराना नहीं है, उनसे क्या करना है, और क्या समझ रहे हैं, हाँ, उनको हमको उन पर जीत पानी है। विकारों से हमको डरना नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, ऐसे दृश्य आएंगे, ऐसे समाचार सुनने के लिए आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो हमको हम बिल्कुल इग्नोर कर दें उनको। अब सामने कोई दृश्य दिखाई दे रहा है तो आंखें बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे मन को प्रभावित ना कर ले, वो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाने का एक साधन बन जाए, एक हाँ जी हमारी जाँच के लिए आया है। हाँ, शेर के सामने मेरे आंखें डालकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाओ, कुछ नहीं करता है। सांप भी ऐसे ही है, अगर सांप के सामने अगर जगन्नाथ भाई खड़े हो जाए तो सांप डांस करने लगता है, तो आंख बिना आपकी तो परछाई से वो एकदम शांत हो जाते हैं। जैसे जगन्नाथ भाई पहुंचते वहां तो सांप वहीं कभी ठंडा हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है और उसको पकड़ के हाँ तो जगन्नाथ भाई सुना रहे हैं कि दादी हृदय पुष्पा जी के साथ जब वो बंगलोर में रहा करते थे तो दादी हृदय पुष्पा जी स्नान कर रहे थे और उनके बाथरूम में सांप आ गया, तो दादी जी तो अचल डोल रहे, स्नान करके बाहर आ गए बाथरूम के और बुलाया, जगत इधर आओ, और अंदर में सांप बैठा है और उसको बाहर निकालो। तो जगन्नाथ भाई जी ने सांप को बोला, भाई दादियों को तंग नहीं करो, आप आ जाओ बाहर। तो सांप भी धीरे से बाल्टी में आ गया। तो वास्तव में जो ये चीज़ें, ये हमारी संवेदना को बहुत जल्दी कैच करते हैं, पशु पंछी प्रकृति, सबसे ज़्यादा प्रकृति हमारी संवेदना को जल्दी कैच करती है, वो हमारा थॉट सिस्टम कैसा है वो जल्दी उससे प्रभावित होती है। इसलिए कई साइंटिस्टों ने इसे पानी के ऊपर भी रिसर्च की है, पेड़ पौधों के ऊपर भी रिसर्च की है कि अगर पानी को सामने रखे, दो गिलास सामने रखिए, गिलास को अगर आप गाली देते हैं तो उसकी उसका रूप विकृत हो जाता है, और दूसरे को अगर उसके आगे अच्छे गीत गुनगुनाते हैं, उसको प्यार करते हैं, गुड वाइब्रेशन देते हैं, तो पानी क्रिस्टल उसमें क्रिस्टल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह प्रकृति के पेड़ पौधे भी हमारी संवेदनाओं को जल्दी कैच कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे थे कि जो भी विकार हैं उनसे हमको डरना नहीं है, उनको जीतना, इसलिए बाबा ने कहा अंत तक तूफान आते रहेंगे लेकिन तुम्हें तूफानों से डरना नहीं है। तो मन में बाबा कहते ऐसे भी संकल्प आएंगे जो आपने कभी अज्ञान काल में भी वो संकल्प आए होंगे, लेकिन इस ज्ञान काल में सारी बीमारियां बाहर निकलेंगी। उन बीमारियों से हमको डरना नहीं, उसका डट के सामना करना है। तो अभी हम देखेंगे जो अनेक प्रकार की विकृतियां हमारे मन के अंदर घर करके बैठ गई हैं, उनको निकालना कैसे है अभी। तो इसके लिए हमको कुछ अग्नि जला के रखनी है ना। शंकर की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है, विनाश होता है। विनाश किस चीज से होता है, आग से होता है। तो हमारी जो विकृतियां हैं उनका भी विनाश कैसे होगा, अग्नि से होगा। और बाबा ने ज्ञान को अलग अलग तरीके से अग्नि के रूप में भी हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो सबसे बड़ी जो अग्नि है वो तो ज्ञान की अग्नि है। तो हमको 10 प्रकार की अग्नि जला के रखनी है। कितनी प्रकार की, 10 प्रकार की। सबसे पहले ज्ञान की आग। तो ज्ञान की आग कैसे जलाएंगे, चिंतन करके। कौन से ज्ञान का चिंतन करेंगे, हाँ, रोज की मुरली से ज़्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट, लेकिन उस पर चिंतन अवश्य करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही याद ही ना रहे हमें, तो आग जलेगी कहाँ, पूरा पानी का पानी पड़ जाएगा। इसलिए जब हम मुरली सुनते हैं तब तो आग लगती है अंदर में, और जैसे सीढ़ियाँ होती तो धीरे धीरे पानी पड़ते पड़ते, बताया ना, जब ऑफिस में बैठते हैं मरीजों को देखते हैं सारी एनर्जी हमारी चली जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो अगर आपका यह हाल ऐसे होगा तो आगे क्या होगा, पुरुषार्थी हैं, ठीक है। तो ज्ञान की आग हमको हमेशा जला के रखनी है। दूसरी अग्नि है योग की आग, तपस्या की अग्नि। वो भी हमको छोटे छोटे बीच बीच में 2 मिनट 1 मिनट का इस बॉडी से बिल्कुल डिटैच होने का, अशरीरी बनने का अभ्यास, तपस्या की अग्नि। बोले हम बाबा से सूक्ष्म वतन में दृष्टि ले रहे हैं या परम धाम में पहुँच रहे हैं, इस शरीर से डिटैच हो रहे हैं, फरिश्तावन परिक्रमा कर रहे हैं, छोटे छोटे हमको अभ्यास करते रहना। तो दूसरी आग है तपस्या की आग को भी हमको प्रज्वलित करके रहना। तीसरी आग है पवित्रता की अग्नि। पवित्रता की अग्नि को कैसे बढ़ाएंगे, जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ को दान करेंगे तो बढ़ेगी। तो पवित्रता के वाइब्रेशन हमको निरंतर फैलाते रहना है। चलते फिरते क्या समझना है, मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। कोई भी हम सम्मान ले सकते हैं, अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं, मैं पवित्रता का महाकाल हूँ, ऐसे कुछ भी जोड़ सकते हैं उसके साथ, पवित्रता का ज्वालामुखी हूँ। तो तीसरी आग है पवित्रता की अग्नि। इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट्री लिख सकते हैं, और कमेंट्री लिखना योग से और भी पावरफुल होता है। अगर हम बैठे हैं मेडिटेशन में, मन बुद्धि भटक रहा है, योग लगाना छोड़ दीजिए, आप कापे पेंसिल लीजिए और पवित्रता के ऊपर कमेंट्री लिखना चालू कर दीजिए। वो भी एक योग से एक शक्तिशाली एक साधन बन जाता है, जो हमारा चिंतन चलता है उसमें हमारी सारी कर्मेंद्रियाँ इन्वॉल्व हो जाती हैं चिंतन करने से, अदरवाइज मन बुद्धि हमारा भटकता रहता है। तो चिंतन करना है उसका, तो हाँ, पवित्रता के ऊपर ऐसे लिखा जा सकता है, निबंध लिखा जा सकता है, और भी पवित्रता के ऊपर अलग अलग तरीके से रचनात्मक हम कार्य कर सकते हैं कि कैसे उसको बढ़ाया जाता है, क्रिएटिव माइंड बनेगा अगर उसके ऊपर। लेटर लिख सकते हैं पवित्रता के ऊपर, बचपन से लेकर, ज्ञान के बचपन से लेकर तो अभी ज्ञान के बुढ़ापे तक जितना भी हमारा ये जीवन बीता है, तो हमारा पवित्रता कैसी रही है बाबा को सारा स्पष्ट रूप से बता दे, क्योंकि बुढ़ापा अर्थात हम बान प्रस्थी हैं सारे, है ना। तो तीसरी अग्नि है पवित्रता की अग्नि। चौथी अग्नि प्रेम, तो बाद में, हाँ, सामने किसी को इमर्ज करके उनको पवित्रता के बारे में सुनाना, स्पीच करना, भले सामने कोई है नहीं लेकिन उनको इमर्ज करना सामने, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग है। तो तीन अग्नि होगी। चौथी है त्याग की अग्नि। चलो बैराग, आशीष भाई का पहले प्राथमिकता दे देते हैं आशीष भाई, फिर है बैराग की अग्नि। तो वैराग्य की चीज़ है। कल हम एक समाचार पढ़ रहे थे, व्हाट्सएप में आया था, एक बेटे ने माँ के गले को काट दिया, उसके खून को पी गया, उसके सिर को माँ के ऊपर बलि चढ़ा दिया, देवी के ऊपर, और एक मास उसके मांस को खाता रहा। ऐसे आएगा वैराग्य, ये है संसार की हालत। इसलिए संसार से भागना नहीं है, पढ़ो देखो संसार की हालत क्या है, ये है प्यार का असली स्वरूप। कितनी जबरदस्त घटना है ये, फिर भी संसार जी रहा है, और घटनाएं कम नहीं होती, उससे बढ़ रही है। ये तो केवल मीडिया ने सामने लाई है, जो सामने नहीं आए उसका क्या है। माँ ने बेटे ने माँ के गले को काट दिया, उसके खून को पी गया, उसके गले को फिर देवी के ऊपर चढ़ा दिया, एक महीना और उसके मांस को खाता रहा, आखिर पुलिस ने जंगल से पकड़ा जाके। खैर, तो ऐसी घटना से क्या होगा, वैराग्य की आग जलेगी। तो ये चौथी आग थी ना। और पांचवी है त्याग की अग्नि। कौन सा त्याग करेंगे? जो भी हमारा व्यर्थ में समय बीत रहा है उसका हम त्याग करेंगे। त्याग की अग्नि को प्रज्वलित रखना। कहाँ? आज के मूल्य में झरमोई जगमोई नहीं करनी है। जी हाँ, गॉसिप सुदर्शन चक्र फिराते रहना है, झरमोई जगमोई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये कितनी अग्नि होगी? पांचवी त्याग की अग्नि। छठी है सेवा की अग्नि, सेवा की आग। अपने को बिजी रखना है। अगर हम बिजी नहीं रहते हैं तो खाली मन शैतान का घर है। तो सेवा की अग्नि भी हमको प्रज्वलित रखनी, प्रज्वलित करके रखनी है। नेक्स्ट है प्रेम की आग। बाबा के प्रेम में कैसे खो जाएंगे? एक तो लेटर लिख के भी खो जाएंगे। हम उन सब अनुभवों को याद करें जो हमारे इस ब्राह्मण काल में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आईं और बाबा ने हमको उसमें सहयोग दिया और उनसे हम उभर कर बाहर निकल कर आए। तो ऐसे अनुभवों को याद करके बाबा के प्रेम में खो जाने का है। तो ये सातवीं अग्नि थी प्रेम की अग्नि। अब हाँ जी, हाँ, बाबा के गीत, अच्छे अच्छे गीत सुन के उस, हाँ जी, उपकार तुम्हारा हो बाबा, ऐसे बहुत सारे कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में, सतयुग में तेरा ऐसा प्यार। तो ये सारी चीज़ें सुनते, गीत संगीत भी सुनकर हम अपने आप को प्रेम की अग्नि में लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी तीन प्रकार की अग्नि थोड़ा अलग से है। नेक्स्ट है नष्ट मोहा। ये बेहद के वैराग्य में नष्ट मोह की आग प्रज्वलित होगी। और नेक्स्ट है शमशान की आग। अपने आप को शमशान में जलता हुआ देखना है। हमने बचपन से पढ़ा है, सुना है, संसार में भी सुनते हैं लोग, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन हमारा डर कहाँ निकला? अभी भी निकला डर के मरने से? कहाँ निकला है? इस शरीर से हम कितने चिपके हुए हैं। संसार वाले पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, और हमारे उनमें जांच करें, निरीक्षण करें कि कितना अंतर है उसमें, कि इतनी शरीर से कितनी आत्मा चिपकी हुई है। सोचो कि अजर अमर अविनाशी हूँ, हम मरते नहीं हैं, तो डर किस चीज़ का फिर? लेकिन फिर भी डर है। कितने प्रकार के डर हमने पकड़ के रखे हुए हैं। तो शमशान में अपने आप को जलता हुआ देखना है, बहुत मजा आएगा उसमें। नेक्स्ट है विनाश की आग। अभी दूसरे बाद में, पहले तो अपने आप को जलाएंगे। नेक्स्ट है विनाश की आग। एक है स्वयं का, दूसरा है संसार के विनाश को देखना है। संसार की हालत किस मोड़ पर पहुंच चुकी है, कौन सी दिशा में संसार जा रहा है, चारों ओर क्या है? विनाश की अग्नि है और ये रुकने वाली नहीं है। तो शुभ भावना रखो थोड़ी, क्यों नहीं रुकेगी? तो हाँ, तो इस विनाश के पीछे कल्याण समाया हुआ है। तो संसार की अगर हम देखेंगे विनाश ज्वाला किस तरीके से बढ़ती जा रही है और कैसी कैसी परिस्थितियाँ हैं। हम लोग तो चलो ब्राह्मण बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं ब्राह्मण हैं, बाबा के बने हैं, तो मेरे बच्चों को आँच भी नहीं आ सकती है। लेकिन आप संसार की उन आत्माओं को देखिए जिन्होंने अपना सारा जीवन की संपत्ति खो दी, अपने रिश्ते नाते सारे खो दिए, इतनी प्रॉपर्टी खो दी, जायदाद खो दी सारी, देश छोड़कर चले गए, उनकी हालत देखिए कैसी, विनाश के तांडव नृत्य सारों चल रहा है। तो उसको भी देखना है। तो विनाश की आग भी दिन में थोड़ा प्रज्वलित रखनी है, करके रखनी है। और लास्ट वाली अग्नि है वृक्षों की अग्नि और महाविनाश की आग। एक है विनाश, दूसरा लास्ट है महाविनाश। सारे संसार को जलता हुआ देखना है, क्योंकि ये तो सब होना ही है। और ऐसा नहीं है कि डराने की बात है, नहीं तो कोई कोई लोग कहते हैं आप थोड़ा अच्छी बातें भी क्या करो, विनाश की बातें करते रहते हो। तो जो प्रैक्टिकल में वो तो है ही है, और सुबह सुबह अशुभ बातें है ना, तो ये अशुभ बातें करके आत्मा थोड़े अंदर से झकझोर जाएगी। हाँ, तो ये सब चीज़ें शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा खाओ पियो। और वास्तव में हमने देखा बाबा कहते हैं अगर ज़्यादा खुशी ना तो खाना उतना ज़्यादा खा ही नहीं पाते हैं, है ना। तो ज्ञान योग को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इस मार्ग पर पहुंच जाएंगे। कौन से? प्राणिक मार्ग पर। तो ज्ञान योग को कम नहीं करने का है, उस पर पहुंचने के लिए ज्ञान योग प्राथमिकता है और ये हमारा परिणाम है। लेकिन दूसरे पहलू से देखा जाए अगर इससे करेंगे तो ज्ञान योग जल्दी अर्जित कर सकेंगे। तो ये सारा गोल गोल ही है। अब जहाँ से आपको शुरू करना है आप अपने तरीके से निश्चित करने के, कहाँ से शुरू करें, अपनी अपनी समझ के साथ। तो ये हमने 10 बातें देखी। कौन कौन सी? एक तो हमको हमेशा निरंतर आंख खोल कर रखनी है। कौन सी? स्मृति की आंख। बेहोशी की अवस्था में नहीं, होश में रहना, जागरूक रखना है। अगर हमारी आंख बंद हो गई तो क्या होगा? हमारा अपना ही विनाश हो जाएगा। इसलिए हमको स्मृति की आंख समर्थ स्मृतियों की आंख हमेशा खुली रखनी है कि कौन कौन सी ऐसी समर्थ स्मृतियां हम रखें ताकि हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहे। तो उसमें 10 अग्नि हमको प्रज्वलित करके रखनी है। कौन कौन सी अग्नि थी? सबसे पहली थी ज्ञान की आग। तो सारे में देखना है कि हमारे मन बुद्धि रूपी पात्र में कितने ज्ञान के ऐसे हमने हीरे मोती इकट्ठे करके रखे हैं, या इतने ऐसे ज्ञान की मशाल जलाकर रखी है जो हमारे अंधकार को मिटा रही है। तो ज्ञान की अग्नि हमको प्रज्वलित कर रखनी है। दूसरा है तपस्या की अग्नि। कितना सारे दिन में हम छोटे छोटे योग के प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन योगी जीवन है, केवल बैठे बैठे योगी नहीं है। बताया ना इंग्लिश क्लास में भी कि हमारा जीवन ऐसा नहीं कि सवेरे शाम हमने योग कर दिया, नहीं, निरंतर योगी हैं, सहज योगी हम, नेचुरल योगी। योग तो कहीं ना कहीं लगा रहता है, या तो बाबा के साथ लगा रहा है, नहीं तो परिस्थितियों के साथ लगा हुआ है, लौकिक के साथ लगा हुआ है, बिजनेस के साथ लगा हुआ है। तो हमको देखना है सारे दिन में हम इस तपस्या की अग्नि को कितना प्रज्वलित करके रखते हैं। और तीसरी अग्नि है पवित्रता की अग्नि। तो सारे दिन में पवित्रता के ऊपर, हमारा स्वयं के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। पवित्रता तो वास्तविक में परिणाम है वो भी, लेकिन फिर भी जितना हम चिंतन करते हैं पवित्रता के ऊपर, ऐसे लिखते हैं या उसके ऊपर कमेंट्री लिखते हैं, तो भी हमारी पवित्रता दिन प्रतिदिन प्रखर होती रहेगी। फिर ये सारे कर्मेंद्रियां हमको चंचल नहीं करेंगी, ये हमारा सहयोगी साथी बन जाएंगी। तो तीसरी आग है पवित्रता की आग। और चौथी अग्नि है बेहद की वैराग्य की अग्नि। वैराग्य की अग्नि के लिए क्या बताया था बीच में अभी? न्यूज़ संसार का भी देखना, क्या हो रहा है संसार में, उस तरीके से देखना उसमें हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है। उस तरीके से देखना नहीं, सुनना अगर मिल जाए तो, ज़रूरी नहीं उनको देखना ही है। अब ये जो है ये तो खाली नींद ही हराम कर देती, इस तरह की न्यूज़ जो है हमारे पुरुषार्थ को डेवलप करेगी आगे। और वास्तव में असलियत संसार का तो हमको पता ही है, लेकिन इस तरह की जो न्यूज़ होती है सुन के आपके मन में भी क्या आया? अभी वैराग्य आया। तो ये बेहद के वैराग्य की अग्नि भी प्रज्वलित करके रखनी है। नेक्स्ट है त्याग की अग्नि। कहीं हमारा समय जर्मुई जगमुई में तो नहीं जा रहा है? कौन क्या कर रहा है अभी वो देखने का टाइम चला गया, हम क्या कर रहे हैं वो भी देखने का टाइम कहाँ है अभी? इतना दे पा रहे हैं हम अपने आप को? कितने सारे जंजालों में हमने फंसा के रखा हुआ अपने आप को? तो उसमें देखना है, थोड़ा जांच बैठ के करनी है, निरीक्षण करना है। तो त्याग की अग्नि। नेक्स्ट है प्रेम की अग्नि। बाबा के प्रेम में अच्छे अच्छे गीत सुने, है ना, उसके उपकार हमारे ऊपर कौन कौन से, उसको भी प्रज्वलित करके रखेंगे। नेक्स्ट है, नहीं ये तो 7 अग्नि होगी, उसमें लगना आ गया, अभी 3 अग्नि कौन कौन सी? शमशान की अग्नि, है ना। तो शमशान की अग्नि में क्या देखना है? क्या घर तो हमारा घर वही है, जाना तो वही है शरीर का घर, है ना, तो शमशान को भी देखना है। और नेक्स्ट है विनाश की आग, और लास्ट में महाविनाश की अग्नि। तो ऐसे महाकाल बन के स्वयं का ही हमको निरीक्षण करना है, और तीसरी आंख से अनुभव करना है। योग में जब बैठेंगे तो नए नए तरीके, जैसे यहाँ से मेरी तीसरी आंख खुली और अग्नि के गोले निकल रहे हैं सब जगह, ये आंखें खुली हैं आग के गोले निकल रहे हैं, है ना। और ये हॉल में क्या है? आग ही आग बैठे, ये सारे अग्नि के गोले बैठे हुए हैं, ज्वाला भवन है ये सारा। और ऐसे पुराने हम जब नाटक देखते थे पहले, तो शंकर जी का तांडव नृत्य हो तो अग्नि के ऊपर चलते, सब तरफ अग्नि अग्नि है, और यहाँ से अग्नि निकल रही है, यहाँ से अग्नि निकल रही है, यहाँ से अग्नि निकल रही है। तो इस तरह सारे दिन में इमेजिनेशन, इस तरह की तस्वीर को हम सामने अगर उसको चित्रित करके रखेंगे तो उस तरह से योग की नवीनता आएगी। तो नींद आएगी कहाँ? जब आग लगी होगी तो नींद आएगी? कभी सुस्ती आ ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। तो हाँ, वो तो फिर बहादुर होते हैं, तो वो तो कई बार हम सुनते भी हैं कि जिसको सोना आता तो सो ही जाता है। मैंने बताया ना, एक भाई अलार्म लगा के रखा हुआ था, तो रोज़ रोज़ बेचारे को नींद आ जाती थी, तो अलार्म पास में रखता था, तो किसी ने बताया थोड़ा दूर रखो, तो थोड़ा दूर रखा, तो लेकिन आदत तो पक्की होती है, वो भी तो अपनी आदत से पक्के होते हैं ना, तो दूर उठा के फिर उसने बंद करके फिर सो गया। फिर उसने बोला तुम खटिया के नीचे रखो जाके, ताकि उठ के थोड़ा हलचल में जाएगा। तो उसने खटिया के नीचे जाके फिर वहाँ बंद कर खटिया के नीचे सो गया जाके। तो ऐसे संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो हमको नए संस्कार निर्माण करने हैं, इस तरह की ज्ञान योग की अगर हम अग्नि प्रज्वलित करके रखेंगे तो स्वयं का स्वयं महाकाल बनकर हमको पुरुषार्थ में नवीनता तीव्रता लानी है, रोचकता लानी है, ताकि इस ब्राह्मण जीवन का हम सुख ले सकें। ओम शांति।
धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ मैं, शिव पिता का प्यारा हूँ, धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा मैं शिव पिता का प्यारा हूँ, न्यारा हूँ निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।